आयत 42 को देखिएगा, जकरिया और याहिया का किस्सा खत्म हुआ। अल्लाह ने जकरिया अलैहिस्सलाम को ज़ईफ़ी की उम्र में एक बांझ और बूढ़ी औरत से याहिया जैसा बेटा दिया। ये भी एक किस्म का मौजज़ा ही था, लेकिन अब उससे भी बड़ा एक मौजज़ा जिसमें मरियम अजमाई जाएंगी, वो अभी इधर तज़किरा हो रहा है। यानी आप लिख लें आयत 42 से आगे पैदाइश मसीह का जिक्र है, जबकि पिछली आयतों में पैदाइश याहिया का जिक्र गुजरा। क्या है, आइए खुलासा करते हैं। वह इस कालत, और जब कहा अल मलाइकातु फरिश्तों ने या मरियमो ए मरियम इन्नल्लाहस्तफा की यकीनन अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया वतहरा की और तुमको खूब पाक कर दिया वस्तफा की और तुम्हें तरजीह दी अला निसाइल आलमीन सारे जहान की औरतों पर। ये मरियम का चुनाव है, कब है, जवान हो गई। अब नेक्स्ट स्लॉट है ना, बेबी मरियम रेज्ड अप हो गई, जवान हो गई, बचपन से इबादत की खूब थी, तो उनके अंदर वो गंदगी नहीं थी जो आम औरतों में होती है या बच्चियों में यंग उम्र में, जिस उम्र में लड़के लड़कियों की बातें करते और लिविंग टुगेदर और बॉय फ्रेंडशिप और लव मैरिज। वो मरियम बैठ के अल्लाह की इबादत करती थी, जब वो करती थी फरिश्ता आ गया, और फरिश्ते आते ही था वहां उन्हीं बच्चियों के पास फरिश्ते आते हैं जो इबादत में मसरूफ हैं, जिन्होंने खुद को पाक रखा है। कहा क्या फरिश्ते ने, या मरियम उखनती ली रब्बी की, ए मरियम अपने रब की फरमा बरदारी करती रहो, वस जुदी और सजदा भी करो, वरकाई और रुकू भी करो, कहा मार रा के इन रुकू करने वालों के साथ, यानी बाजमात नमाज में शरीक होने की तरफ भी इशारा है। सजदा लग है, क्योंकि सजदा नमाज के अलावा भी हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे रुकू नहीं होता नमाज के अलावा, अक्सर सजदों में हम गिरते हैं रुकू में नहीं गिरते। तो यहाँ बस जो दी करके ना उसके बाद जो वो है ना, ये फर्क किया जा रहा है कि अकेला भी सजदा कर लिया करो, नमाज में तो करते ही है, और वर कई मार आके इन रुकू भी करती रहो रुकू करने वालियों के साथ। और अब ये सारी कहानी पूरी हुई आखिरी आयत में नबी सल्लम को मुखातिब किया जा रहा है, लिख लें, क्योंकि कहानी सुनाते सुनाते एकदम जिसको सुनाया जा रहा है उसको मुखातिब करें ना, तो बाद दफा बंदा चौंक जाता है। इस तरह हो सकता है आप सुनते सुनते चौंक ना जाएं कि अल्लाह ताला किसको कह रहे हैं। तो लिखिए आयत 44 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुकारा जा रहा है, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नुहीही इलैक, ये गैब की खबरों में से है, जय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको वही कर रहे हैं। यानी ये सारी बातें आपको हम दे रहे हैं, किसी को पता भी नहीं था। देखिए ना, ये आपके नबी होने की अलामत, मक्का मदीना में तो कोई इन बातों को जानता भी नहीं था। वमा कुंत लदैहिम, और आप तो उनके पास मौजूद ना थे। कब, इज युल्कून अक्लामहुम, जबकि वो अपने कलम फेंक रहे थे। क्यों फेंक रहे थे, के अय्युहुम यकफुलु मरियम, ताकि ये तय करें कि इनमें से कौन मरियम का कफील होगा। ये कब की तरफ अब वापस चलेगी बात, मरियम के बचपन की तरफ। देख रहे कहानी पूरी हुई है, अब नबी सल्लम को वो कहते हैं कि थिंक, पॉन्डर करें, गौर करें, अब इसमें से मॉरल्स और लेसन्स लिए जा रहे हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम को कौन पालेगा, ये कैसे। ये वही वाकया जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की किफालत में मरियम ने आना था, तो सबका ही दिल था कि हमें मिले, क्योंकि देखिए ना अपने दौर के इतने अच्छे शख्स की बेटी थी और फौत हो चुके हैं और बीवी है और माँ भी इतनी नेक है, तो हर एक की ख्वाहिश थी कि बच्ची हमारे पास हो। तो फिर कुरा डाला गया, इधर से कुरा अंदाजी का जवाब भी मिलता है कि अगर उसके साथ कोई पैसे वगैरह ना रखे जाएं, सट्टा वगैरह ना हो, तो कुरा अंदाजी की जा सकती है। अल्लाह के नबी भी करते थे सफर में जाते हुए, किस बीवी को साथ ले जाऊं, जिसका नाम कुर्रे में आ गया उसको ले लें। अल्लाह की तरफ से अलामत थी कि जकरिया ही इस बात के हकदार है, तो नाम फिर जकरिया का उतरा। तो अल्लाह अपने नबी को कह रहे आप उधर नहीं थे। अच्छा, इससे एक और बात क्या पता चली कि नबी सल्लम हाजिर नाजिर नहीं थे। अल्लाह बार बार कह रहे आप उधर थे ही नहीं। आगे भी हम पढ़ेंगे एक जगह, जब वो मदियन की तरफ जा रहा था तो आप तो वहां खड़े ही नहीं थे। और आखिर में कहा मा कुंत लदैहिम, दोबारा कहा सुन लो आप वहां मौजूद नहीं थे। इस यख्तसिमून, जब वो झगड़ रहे थे, किस बात में झगड़ रहे थे कि कौन मरियम को पालेगा। अब आप देखिए, आपने एक स्ट्रेच में सारी बात सुनी, मुझे सारी बात बताने के दौरान जो बात समझ आई है वो ये आई है कि अल्लाह कुर्बानियों को जाया नहीं करता। دوسری بات سمجھ آتی ہے کہ عورت کی بھی اہمیت ہے. پوری کہانی میں جو مین کردار ہے وہ عورت ہی ہے, بی بی حنہ اور بی بی مریم. بی بی حنہ نے قربانی کی تو مریم پیدا ہوئی, اور مریم کی عبادات اور باقی ساری چیزوں کو پیش کریں تو وہاں آپ کو دوسری بات دکھتی ہے. پھر اگلی چیز دیکھیے کہ تھوڑا سا اب اس میں سے ہم اشارے لیتے ہیں کہ ہمیں آپ کو اس میں سے کیا ملا. تو پہلی بات ہے کہ یہ جو عمران تو عمران ہے نا, اس کے دو معنی میں نے آپ کو شروع میں بھی بتائے تھے. اگر عمران کو شخص سمجھا جائے تو پھر عمران ان کا معنی یہاں بیوی ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر عمران کو وہ جیسے اعلی عمران اوپر بات تھی کنبہ قبیلہ سمجھا جائے تو پھر قبیلہ عمران کی ایک عورت, لفظ عمران ان میں دونوں ہی معنی ہے. یہاں بیوی کا لفظ نہیں آیا, درایت کو دیکھیے گا. اگر یہاں یہ لفظ ہوتا نا اس کالتن زوجہ تو عمران, پھر دونوں معنی نہیں تھے مراد, ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ وجہ ہے. سوال لکھیے کہ یہاں عمران تو کا لفظ کیوں آیا, زوجہ کا, یا آپ کہہ لیجئے کہ نساء کا کیوں نہیں آیا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں ڈیول میننگز ہیں. امرا کا لفظ بیوی کے لیے بھی آتا ہے اور عورت کے لیے بھی آتا ہے, یہ دونوں معنی اس میں آ گئے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ ایسی منت, ایسی نظر کون مان سکتا ہے؟ وہ مان سکتا ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہو. ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتی ہے اس کے لیے اس میں سبق ہے. آپ دیکھیے ماں کا دل ایمان کے نور سے بھرپور تھا, اور اس ماں نے اپنا عزیز ترین سرمایہ اپنے رب کو پیش کر دیا. انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ. یہ قربانی, اس کو نظر تبرو کہتے ہیں, نیکی کی منت. اور لفظ نظر آپ نے خود بھی پڑھا ہے پہلے بھی, نظر کہتے ہیں جس کو ہمارے کلچر میں منت کہتے ہیں. نقصان سے بچنے کے لیے اپنے اوپر کچھ واجب کر دینا اور ساتھ کوئی شرط رکھ لینا. مثلا کوئی کہتا ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں یوں کروں گا, یہ نظر ہے. اور نظر مانی جا سکتی ہے, جائز کام کی جا سکتی ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ ماں کا یہ کہنا کہ انی نظر تو لکا معافی بطنی محررہ, محررہ کے لفظ کو دیکھ لیں, حرارہ. بطنی کو پہلے پہلے دیکھ لیں, بطن کہتے ہیں اندر کے حصے کو, بتانا اسی سے دوستی ہے, گہری دوستی. اس کی جمع بتون ہوتی ہے, اور بطن زہر کی اپوزٹ ہے, یعنی ضد ہے زہر کی. خالی ہونا, فارغ ہونا, ہر چیز کی نیچے کی جہت سائڈ کو بطن کہتے ہیں. جیسے رضائی کا استر ہوتا ہے نا, اندر والا حصہ جو جسم کے ساتھ لگتا ہے, اس کو بتانا کہتے ہیں بطن سے. اب یہاں کیا پتا چلا کہ کوئی چیز ابھی ہاتھ میں نہیں آئی اور اس کے لیے آپ منت مانگ رہے ہیں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کروں گی, تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لفظ محررہ یہاں کیوں آیا, یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا. تو یہاں دیکھیے گا کہ لفظ محرر میں حرارہ ملتا ہے. حرارہ کہتے ہیں گرمی کو, کہتے ہیں نا حرارت بہت ہے, درجہ حرارت اردو میں بولتے ہیں. حرور کہتے ہیں دھوپ کی تپش کو, زل یا زل کے مقابلے پہ آتا ہے یہ لفظ. اچھا حریر کس کو کہتے ہیں؟ حریر ریشم کو. الحریر کہتے ہیں نا ریشمی کپڑے کو, ہر باریک کپڑے کو حریر کہتے ہیں. اس مادے کے معنوں میں کیا پتا چلتا ہے کہ بغیر آمیزش کی چیز. کسی کو آزاد کر دینا تو اس کے اوپر کسی کا روک نہیں رہتا. اور حر جو ہے نا, حر یا عبد کی اپوزٹ ہے, غلام بےچارا اپنے قابو میں نہیں ہوتا نا. لیکن جو ہر ہے یا حر ہے وہ دوسروں سے بالکل آزاد ہے, ہر چیز کا بہترین حصہ, عمدہ گھوڑا. اسی طرح عام زمین اور ریتلی زمین میں سے بہترین زمین کو کہتے ہیں. یعنی لفظ ہر میں آپ کو سمجھ آگے آزاد, ایسا بندہ جو اپنے ذہن کو, اپنے خیالات کو اپنی مرضی سے سوچ سکے. پھر اسی طرح عرب لوگ کہتے تھے تحریر ولدی, کسی بچے کو کسی عبادت خانے کی جگہ پہ وقف کر دینا. وہی معنی ادھر لیا گیا. آپ اپنے اوپر بتائیں کہ ادھر اس ماں کی کیا خواہش تھی. دیکھیے عموماً ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ کیا نظریہ ہوتا ہے, بڑے ہوں گے پھر ہمیں کما کے کھلائیں گے, بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے, ہم ان کے سر پہ سہرا دیکھیں گے. اکثر ماں باپ اولاد کے معاملے میں کیا یہی کانسیپٹ نہیں رکھتے؟ کسی کے بچے نہ ہوں تو لوگ کیا سوچتے ہیں, ہائے ان کو بڑھاپے میں پانی کون پلائے گا. تو جن کے ہیں وہ پلا پاتے ہیں, کیا بچے ہمیشہ پاس ہیں؟ اور جو ہیں کیا پتا وہ آپ سے پہلے چلے جائیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن ساری چیزیں موجود ہیں نا دنیا میں. ایک صورت ہے جس کے لیے آپ اولاد مانگ سکتے ہیں اللہ سے, मुहर्रन, क्या अल्लाह मुझे बच्चा दे ताकि मैं उसको आजाद कर दूं, मैं उसका ख्याल रखूं, मैं उसकी टेक केयर करूं ताकि वो तेरे दीन को सर्व कर सके। और यहां से एक और बात पता चलती है कि उन्होंने बेटी के लिए दुआ मांगी और साथ ही उनके बच्चों की दुआ करके रहबानियत को तोड़ा। उस दौर में जो लोग बैतुल मकदस की खिदमत करते थे ना, वो राहे बन जाते थे, शादियां नहीं करते थे। तो इस एक लफ्ज से बीबी मरियम के शादी करने का तसव्वुर भी इसमें आ गया। फिर आप देखिए कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी कि अल्लाह मुझे ये दे तो फिर दूं, बगैर शर्त के उन्होंने कुर्बानी की दी। कोई शिरकिया तसव्वुर नहीं था, खुशी और खुदू था। इन्नी नजर तुमाफी बथनी मुहर्ररा, आप और मैं अपने आप से पूछें, अगर हम हजरत हन्ना वाले हालात में होते तो क्या हम ये नजर मान सकते थे? आज ये चीज मिसिंग है जिसको मैं कहती हूं बच्चों को तालीम के दौरान दिया जाए। आज हम बच्चों को तालीम भी देते ना, अलीफ अलीफ ऐसे नहीं पढ़ते, बा मोटा करो पतला करो, जीम जीम नहीं, ये हैं। बच्चों को ये बताइए कि वो बच्चे मुहर्रर बन जाए। मैं कहती हूं कामयाब टीचर बच्चों की वो है कि जो बच्चे को वक्त से बड़ा कर दे, उसके दिल में वो तड़प पैदा कर दे कि मैंने कुछ करके जाना है दुनिया से। हम कहते बड़े बच्चों के साथ तो ये हो सकता है, छोटों के साथ नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला फिर ऐसी चीजों को कबूल करता है। और कैसा अल्लाह ने कबूल किया आप देखिए कि बेहतरीन तरीके से, कबूल इन हसन इन, काफ बा लाम से ये रूट है, कबल कबूलियत, इसी से लफ्ज़ किबला भी है, बाद की जिद बात वाली चीज करते हैं ना। अच्छा लफ्ज कबीला आपने सुना है ना, वो भी इसी से होता है। कबीले के लफ्ज में ये भी लफ्ज कैसे आ जाता है? आप कहते हैं कि कबूलियत और चीज है और कबीला को बोल ये क्यों आता है? तो आप देखिए कि कबीलों और कौमों में सारे लोग जो होते हैं ना, वो एक ही माइंड के होते हैं, वो एक ही चीज को कबूल करते हैं, एक तौर तरीका होता है। फिर इसी तरह कबीला कुएं के मुंह पर रखी हुई बड़ी चट्टान को भी कहते हैं। यानी इसके लफ्ज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने मैंने इससे क्या सीखा ये आप और मैं खुद देख सकते हैं। हम सबके लिए इन सारी चीजों में सबक है कि वो तो अपनी औलाद पेश करती हैं, हम क्या पेश करते हैं? अपने आप से पूछिए, मैंने अल्लाह के लिए क्या देना है? अब देखिए ना, हम चौथे पारे पे आने वाले हैं। पहली आयत ही आपसे बहुत सारी कुर्बानियां मांगेगी, तो कुर्बानियों के लिए जगह तो पहले ही हमवार होती है ना। आज अल्लाह ने इस औरत का वाक्य सुना दिया कि जब तक ऐसी माएं नहीं पैदा होंगी तब तक बात नहीं होगी। और ऐसी माएं कहां से आती हैं? इंपोर्टेड नहीं होती ना, ये एक्सपोर्ट करनी पड़ती है ना इंपोर्ट, ये कुरान की क्लासों में से निकलती है। जो माएं आप जैसी कुरान सुन के यहां बैठकर अपने दिल में कुर्बानी के जज्बे नहीं लाती, वो माएं कभी अपनी औलादों को डिवोट नहीं कर सकती। मैं जब बच्चों की माओं से मिलती हूं तो मेरा दिल सदमों से भर जाता है। इवन जो हमारे स्कूल में पढ़ाने आते हैं बच्चों को, माँ का कोई रंग ढंग नहीं मिलता उस चीज से जो वो बच्चे को, वो या हम उसको बनाना चाहेंगे। मैंने एक माँ से कहा कि अच्छा बच्चे के अंदर सुनाए कैसी चीजें हैं, ये है वो है, नमाज का पढ़ता, कहती बहुत अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं तंग करता। खैर बात चली, मैंने कहा कितने बजे नमाज? सारी पढ़ता पढ़ मैंने कहा फजर पढ़ता है सुबह उठ के? मुझे बड़ी हैरत हुई, 9 साल का तो शायद, 2-3 बच्चे उसके आते हैं। कहती हाँ हाँ पढ़ता है। मैंने कहा कितने बजे? कहती बस जब उठता है पढ़ लेता है। माँ इस पर बड़ी खुश है कि जब उठता है 7-8 बजे। तो मैंने कहा नहीं, इसको भी ये आदत ना डालें, क्योंकि शुरू में जो डलती आते हैं वो पढ़ने पढ़ाने के बाद भी नहीं बदलती, तो आपको डालें। तो मैंने कहा आप जब खुद उठती हैं ना तो आप 7 उठाए। तो कहती है मैं कहाँ पढ़ती थी, मैंने भी अब शुरू किया। बच्चा पढ़ता है खुद, माँ इसलिए बड़ी खुश है कि मेरे से ज्यादा पढ़ता है। मेरा फौरन डिमोरलाइजेशन हो गया कि ये बच्चा जब तक माँ इसके पीछे नहीं लगेगी ये बात नहीं करेगा। तो सोचिए आप और मैं कि हमने क्या करना है। मैं सोचती हूँ कि हमें सिर्फ एक तड़प लग जाए ना कि हमने अपने लोगों को कुरान से जोड़ना है। एक दफा कुरान से माँ जुड़ेगी फिर बातें आएंगी, वरना हवा की तरह आप मौजू देखे लेक्चर सुनते हैं, लोग कहते हैं मजा आ गया, बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ अंदर पानी की तरह कुरान जिस्म के अंदर ना रच जाए बस जाए तब तक बात ही नहीं बनती। और ये सारा कुछ सुन के जिसमें हजरत मरियम की सच्चाइयां भी हैं और उसकी माँ की भी खूबियां हैं, हमें भी अपने लिए फिक्र करना है। अगर मैं और आप इस चीज की तड़प रख सकते हैं तो रख लें, जितनी ज्यादा। और देखिए ये मेरे आपके कहने से कोई नहीं होना, ये करें, फ्लायर ले जाएं, उसको बताएं, उनको फोन करें, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका, आप कहेंगे इनको बोलना आता है, बोलती रहती हैं। आपके अंदर आग लगी होगी ना जब इस चीज की, फिर आप इस चीज को समझेंगे। मेरी नजदीक हर मसला इस वक्त जो इंसानियत को लगा हुआ है ना, मुसलमानों को खास तौर पे, वो इस कुरान से दूरी है। चंद दिन पहले किसी ने एक वीडियो भेजी, पहले भी देखी हुई थी लेकिन मैंने दोबारा उसको देखी, तो एक शख्स है नॉन मुस्लिम और वो मुसलमानों को कह रहा है कि मैं तुमको कहता हूं कि खुदा के लिए तुम अपनी अरबी जुबान पढ़ो। कहता है मैं पिछले 2 साल से हर दिन 2 घंटे अरबी पढ़ रहा हूं और 2 साल हो गए पढ़ते हुए। उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अरबी जुबान से खूबसूरत जुबान कोई नहीं, ये मैथमेटिकल भी है। और फिर वो पढ़ के सुनाता है, माइंड ना करें तो मैं सुनाऊं, सूरह फातिहा जैसे वो राइम में पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐसे गाके, फिर सूरह बकरा शुरू में पढ़ता है, फिर उसका ट्रांसलेशन करता है और कहता है आई एम सरप्राइज्ड। मैं हैरान हूं उन अरब पेरेंट्स को जो अमेरिका में या बाहर के मुल्कों में जहां भी रहते हैं वो अरब, और उनके बच्चे इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनको अरबी नहीं आती। तो मुस्लिम्स, आई रिक्वेस्ट यू, यू हैव द बेस्ट बुक, यू हैव द बेस्ट लैंग्वेज। आज हमारे दिल में इसकी कितनी तड़प है, कोई किसी की फौतीदगी पे ना जाए कितने गिले बनते हैं, कोई किसी की मुबारक ना देने जाए घर में कितने फिजत में। कभी किसी ने आपसे ये गिला किया कि आपने मुझे अपनी क्लास में क्यों नहीं बुलाया? आप लोगों से मान रखें, आप लोगों का हर लाड देखें, उसके बदले में ये लाड उनसे ले। तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे आपके अंदर ये तड़प डाल दे। जितनी तड़प होगी उतनी इस तासीर होती है, हमारा यकीन काम को लेके आता है। आपका अगर यकीन है ना कि आप ये काम कर सकती हैं, आप कहते हैं मैंने 500 बंदे को इधर जमा करना है, तो 500 नहीं भी आएंगे ना तो उसके करीब जरूर आ जाएंगे, और अगर ना भी आए तो आप मुतमईन होंगे कि मैंने अपनी कोशिश की, क्या पता उसमें से कितने लोग कुरान से जुड़ जाएं। परसों हमारे तो वीकेंड पे एक दर्स था, किसी साथी ने अपनी पर्सनल रकम, मुझे दुख हुआ कि हमारे अपनों में कोई नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से आके गए होते हैं, वो पहले ही थके हुए गए, वो तो नहीं आ सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको पता था या किसी को पता था, बाहर के लोग थे, एक आध स्टूडेंट आई थी जो बाहर से हमारे अपने क्लास में, सब पूरे लोग मेरे सामने जो बैठे थे नहीं होते, इवन हमारे पास बाहर रिसेप्शन में उनको वेलकम करने के लिए भी कोई बंदा नहीं था, तो उन्हीं में से एक को मैंने बाहर भेजा कि आप लोगों को देखे, नए लोग थे सब। कई लोग तो ऐसे थे उनको पता भी नहीं कि ये नूरुल कुरान है, वो एड्रेस ढूंढती भी आई, वो तो वो बेचारी जिसने बुलाया उनको दिया। तो एक सिस्टर इधर बैठी थी, तो मैंने शुरू में उनको साथ मिलाने के लिए पूछा क्या हाल कैसे, तो रोने शुरू हो गई। ऐसी उस औरत में सच्ची तड़प थी, उसकी बेटी साथ थी तो उसको चुप कराए, कहने की मुझे तड़प है, मुझे बेचैनी, और आपको तो वो मैसेज लेके गई है और इंशाल्लाह वो आपकी क्लास ज्वाइन करेगी। तो मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा ये सिस्टर जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, ये किसी को भी ना बुलाती, सिर्फ आपको बुलाती, तो मैं आपके लिए 2 घंटे भी बोलने को तैयार हूँ। और बाद में भी फिर जो दर सुनने के बाद उनकी शेयरिंग थी, मतलब वो 2-3 दफा रोई है उन 1.5-2 घंटों में, क्योंकि उनके अंदर सच्ची तड़प है। कहती ये मैं ढूंढ रही थी, ये मैं चाह रही थी। तो ऐसे हजारों लोग हैं आपके इर्द गिर्द बैठे हुए, हम उन पर रहम खाएं, तकब्बुर ना करें कि हमें बहुत आगे हैं, हम बहुत सीख गए हैं, हमने रहना ही नहीं लोगों में, अगर उनको नहीं पता होगा तो हमारा भी खत्म हो जाएगा वक्त के साथ साथ। कितने आए सीख के गए, वक्त के साथ हवा में गुम हो गए। ये तड़प लोगों को दीन की तरफ लाती है। फिर आप देखिए कि इसमें एक और बड़ी खूबसूरत सी चीज है कि बीबी मरियम की मां ने ये जो दुआ की थी ना शैतान से बचने की, तो ये हदीस में आता है कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो शैतान उसके पास आके उसको कचोक्का लगाता है, सिवाय मरियम और उसके बेटे के, क्योंकि इन्नी ओई जुहाबी का वजुर्रियत हमिन शैतान रजीम। नानियां बन के दुआएं दें अपनी नस्लों को, मैं कहती हूँ एक तरफ तो कोशिशें दें, दूसरी तरफ दुआएं दें। हम जिस माशरे में बैठे हैं, दुनिया का जो हालात है अगर उसको सामने रखें, तो हकीकत में अब हमें दुआओं की भी बहुत जरूरत है, जहां हमें दूसरी चीजों को भी करना है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये जो बात थी कि मैं इस बच्चे से कोई उम्मीदें नहीं लगाऊंगी, तो क्या हम अपने बच्चों को इस उम्मीद पे पाल सकते हैं कि ये कल हमारी खिदमत करें? ये क्वेश्चन है, नहीं पाल सकते। हजरत सुलेमान ने, बुहारी की रिवायत है, दुआ की थी कि अल्लाह ताला आज रात मैं इतनी बीवियों के पास जाऊंगा, फिर मेरे इतने बेटे पैदा होंगे, उन सब बेटों को मैं तेरे रास्ते के मुजाहिद बना दूंगा, तू मुझे मौका दे कि मैं इतने बेटों का बाप बनूं, मैं उनको तेरे रास्ते में लेकर जाऊंगा। फिर सहाबियात की आदत क्या होती थी, सही मुस्लिम की रिवायत सुने, हजरत अनस से कहते हैं कि मेरी वालदा मुझे अल्लाह के नबी की खिदमत में ले गई और उन्होंने मुझे अपने आधे दुपट्टे की चादर बना दी और आधे को मुझे उड़ा दिया, यानी देखिए अनस को लेके जा रही है नबी के पास, दुपट्टे को दो हिस्सों में करके बच्चे को कपड़े पहना रही है। कहा है अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा अनस है, मैं इसे आपकी खिदमत के लिए पेश करने आई हूँ, आप अल्लाह ताला से इसके लिए दुआ मांगे। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह इसके माल और औलाद में ज्यादती फरमा। हजरत अनस ने कहा, अल्लाह की कसम मेरा माल बहुत कसीर है और मेरी औलाद की तादाद आजकल 100 है। और आपको पता है कि सहाबी का जो इरा था, ताबईन और सहाबा दो मुख्तलिफ दौर है ना, तो कहाँ ख़त्म हुआ हजरत अनस की डेथ से। ये आखिरी सहाबी हैं जो फौत हुए, उसके बाद फिर कोई सहाबी नहीं बचा, और 100 साल के करीब इनको उम्र मिली अल्लाह के नबी की दुआ। मदीना में जब आए तो अल्लाह के नबी के पास अपने बेटे को लेके आ गई कि आप इसको अपनी खिदमत में रख लें। वो दुआएं इनको लगी हुई थी, और उसके बाद देखिए अल्लाह ने इनको दौलत भी बहुत दी। उस दौर की औरतें ये काम करती थी, ये ख्वाहिशात होती थी। आज हम कहते हैं कि स्कूल जाएगा, किस बार नहाके जाएगा, कपड़े कैसे पहनेगा, इसको क्या ले दो वो दे दो, और जो तरबियत का रंग होना चाहिए ना वो नहीं होता। याद रखिए वालदैन के बच्चों पर असरात होते हैं, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। माँ बाप नफ्स पे काबू पाएंगे औलाद भी होगी, माँ बाप अल्लाह को याद करेंगे तो औलाद के ऊपर भी होगा। फिर ये जो कहा कि रब ने उसको पाला और बहुत अच्छा ग्रो किया और उसको कबूलियत के साथ चाहिए, इसमें भी एक हमारे लिए अमल है कि जरूरी नहीं कि हम अपनी औलादों को अल्लाह के रास्ते में लगाएं तो वो भूखे नंगे ही मर जाएं। अल्लाह आम लोगों से ज्यादा देता है उनको, कोई जरूरी नहीं कि उनके बंगले कोठियां बाहर देखने में बहुत बड़े हों, लेकिन अल्लाह ताला उसको बेहतरीन तरीके से देता है। बुखारी की रिवायत हजरत अली से नबी सल्लम को कहते हुए सुना कि दुनिया की सबसे बेहतर औरत मरियम बिनते इमरान और खदीजा बिनते खुवैलद थी। ये बुखारी की रिवायत 3432 की है। तो देखिए उनके तस्करे बाद में फिर नबी सल्लम ने भी किए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इधर से आपको ये बात कहना कि ये नेक लोग हैं तो अब इनके पल्लू से पकड़ लो और इनसे ले लो, ये भी बात हमें रिजेक्ट होती है कि हजरत जकरिया ने मरियम से नहीं बल्कि रब से मांगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हजरत जकरिया की दुआ में भी बहुत बात है, कभी मायूस ना हो, बूढ़े हो गए कोई बात नहीं, अल्लाह औलाद देने पर कादिर है, बीमार है अल्लाह सेहत देने पर कादिर है। और फिर इसमें एक आखिरी बात जो हजरत मरियम के किरदार से मिलती है कि अपनी बच्चियों के किरदार को पाक रखना। ऐसे बेरहम मुआशरे में कुरान सीखे सिखाए, तालीम और तरबियत और तस्किया हुए बगैर जब बच्चे बच्चियां चले जाते हैं तो वो हकीकत में कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होते। और माँ से एक उम्मत बनना सिखाती है। मेरा दिल करता है पकड़ पकड़ कर प्यार से मोहब्बत से लोगों को कहूँ कि आओ मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हारा क्या हाल है। और यकीन करे बच्चों की माँ ज्यादा बुखलाई हुई है, वल्लाही। बच्चा 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 पैदा होता है, बच्चे को महाना बना के माँ घर बैठ जाती है। मैं जाती हूँ ना बाहर के मुल्कों में भी या दर्स होते हैं, तो वो कभी कहें ना बेबी सिटिंग का अरेंज नहीं हो रहा, हम लिख दें फ्लायर पे कि नो मदर्स आर अलाउड, या मैं कहती हूँ खबरदार मैंने नहीं बोलना, मैं तो बच्चों की माँ को पढ़ाने आती हूँ। ये जिन्होंने नस्लें बनानी है वो बैठी और आप ही जाती हैं, तो बेबी सिटिंग में बैठी हुई हैं या बाहर बच्चों को लेके घूम रही हैं। बच्चा माँ से आप लेके माँ को अंदर बिठाएं ताकि वो अच्छी माँ बनना सीखे। और यकीन करें ये तड़प लेकर आप शहर में निकलें, आपका ये पूरा हॉल क्या पूरा स्कूल छोटा पड़ जाएगा, इतनी माएँ हैं जो लॉस्ट है इस वक्त। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने अंदर ये दर्द पैदा कैसे करें, कोई बहाना कोई तरीका कोई खुशी का कोई गम का जिसको जाने ना दिया करें, इस सोच के साथ कि शायद हमारी कोशिश से ये बात हो जाए। फिर आप देखें कि अल्लाह ने हजरत जकरिया के नाते से ये भी बता दिया कि बातें कम करो। लोगों के साथ बहुत बातें कर लेते हैं ना तो अल्लाह से करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। जो लोग सारा दिन घर से बाहर से बोलने वाला काम करते हैं तो घर वालों को कहते हैं हमें नहीं बुलाओ हम थके हुए हैं। इसी तरह हम लोगों से बोल बोल के अपनी तरीफें कभी अपने गुनगाते कभी कुछ ये वो, नुकसान क्या होता है कि हम अल्लाह से नहीं बात करते। अल्लाह से करें, जहां आपका अपना बस नहीं चलता वहां अल्लाह ताला से बात करें। चलिए पूरे सबक में से ना थोड़े से लफ्ज आज नए थे, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं तो मैं उसको स्किप करूंगी, लेकिन हम आयत नंबर 36 से कुछ लफ्ज जो नए हैं मेरे गुमान में वो थोड़ी सी मैं वजाहत करती हूँ। जी आयत 36 है, फलम्मा वदा था कालत रब्बी नी वदा तुहा। तो इसमें आप लफ्ज देखिए वजा, ये कम आता है कुरान पाक में या समझे ज्यादा नहीं आता, तो वाव द्वाद आइन का लफ्ज है वदा। वदा उस शयुन कहते हैं इसने किसी चीज को हाथ से गिराकर नीचे रख दिया। तो जो चीज आपने पकड़ी होती है ना उसको छोड़ने या गिराने को वजा कहते हैं। इसी से फिर वजा हमल भी है, माँ ने एक बच्चे को पेट में रखा होता है कई महीने से, लेकिन जिस दिन वो उसको निकालती है तो वजा क्यों कहते हैं, कि काफी देर उसने पकड़ा था, अब उसने छोड़ दिया। फिर इसी तरह ये लफ्ज जो है अरब बोलते हैं, वदातिन नाकतु, ऊंटनी तेज रफ्तारी से चली, यानी तेज चलने को भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई चीज तेज चलती है तो उम्मीद होती है या डर होता है कि वो उसके हाथ से गिर जाएगी। फिर इसी से वबुदी अल किताबु वबदाल मीजान, मीजान के रखने के लिए भी कुरान पाक में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह से इसी आयत में लफ्ज उनसा नया है, पहले नहीं कभी आया और ये बहुत कम आता है कुरान पाक में। हमजा नून सा इसका रूट है, आप सबको अपने लिए सुनना चाहिए क्योंकि हम सब भी खवातीन हैं। तो उनसा क्या है? नरम होना। हदीद अनीस कहते हैं नरम लोहे को, अर्दुन अनीसतुन कहते हैं नरम जमीन को, सैफ अनीसुन कहते हैं नरम तलवार जो काट ना सके, और अन्नसा लहू वो इसके लिए नरम हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें नरमी की बात है। हर फीमेल को कहते हैं, इसका मानी औरत नहीं है, बाज लोग कहते हैं औरत नहीं, लड़की भी नहीं है इसका मानी, बेटी भी नहीं है, फीमेल। इंग्लिश में फीमेल के लिए जो लफ्ज आता है ना, और उर्दू में क्या बोलते हैं? मुअन्नस। जी शाबाश, मुअन्नस के लिए जो लफ्ज है। तो हर वो चीज जिसमें नरमी पाई जाए, नरमी और जोफ होता है क्योंकि मुजक्कर के मुकाबले में औरत नरम होती है या फीमेल नरम होती है। तो इसमें आप कह लीजिए कि काम करने में भी हर चीज में वो अल्लाह की लगाता है। फिर आप देखिए कि लईसा का लफ्ज जहां दोबारा आया काफी दिन के बाद, तो लईसा जो है ना नहीं के मानों में आता है, लेकिन इससे मुजारे नहीं होता, जैसे ला लन लईसा, और इसमें थोड़ी सी शिद्दत पाई जाती है, ज्यादा नहीं होता। अगला लफ्ज जो इसी के ऑपोजिट है उनसा के, वो है जकर। जकर वही लफ्ज है जिससे लफ्ज जिक्र है, जिक्र किसी चीज का याद करना, लेकिन जाल की जेर को जबर में बस आपने बदला है। तो आप देखेंगे कि जकर कहते हैं मुजक्कर को, उर्दू में जैसे मुजक्कर होता है ना। फिर इसके बाद आप देखिए कि समईतुहा का लफ्ज वही है जिससे लफ्ज इस्म है, सीन मीम वाव निशानी को कहते हैं सीमा हुम, और इसी से लफ्ज बिस्मिल्लाह में लफ्ज इस्म है। तो यहां समईतुहा का लफ्ज इसका मानी क्या होता है? मैंने उसका नाम रखा। समीहिया का लफ्ज आता है हम नाम, हम मानी नाम, ये भी कुरान पाक में आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगला कोई नया लफ्ज मरियम, लफ्ज मरियम क्या है? वैसे तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन पहली बात यह कि ये अरबी का लफ्ज नहीं है, हीब्रो यानी सुरियानी जुबान का लफ्ज है। इसका मानी होता है बुलंदी का, बुलंद मर्तबा। इसी तरह जो बहुत अजीब बात करे उसको भी लोग मरियम कहते हैं, और अल मरियम मिनन निसा उस औरत को कहते हैं जो मर्दों से बात तो कर सकती है लेकिन बुराइयों से दूर रहती है, यानी कॉन्फिडेंट औरत के मानों में आप कह सकते हैं। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की मां के साथ इसका ताल्लुक है। इसी तरह मरियम में आजजी और कनूत भी पाया जाता है, आजजी करने वाली औरत और किसी काम को हमेशा करने वाली यानी कॉन्स्टेंट, और किसी चीज के अंदर अपने आप को जमाने वाली। फिर उसके बाद जुर्रिया का लफ्ज पीछे गुजर गया, उईजु हा वही है जिसमें आइन वाव जाल, आउजु का लफ्ज है आउजु बिल्ला में पड़ा। शैतान का लफ्ज बहुत आम है हमारे लिए, शतन कहते हैं मजबूत बटी हुई रस्सी को, लंबी रस्सी, शैतान असल में रस्सी ही डालता है हमें और हम खिंचे आते हैं उसकी तरफ। बेरे शतून कहते हैं उस कुएं को जिसकी गहराई बहुत ज्यादा हो, यानी नीचे से किसी चीज को लेकर आना। तो शैतान या शतन कौन हुआ? जो बहुत दूर से एक बंदे को खींच के ले आता है, यानी उसकी नजर हमेशा इंसान के ऊपर होती है। फिर अगर आप आयत 37 पे जाएं तो इसमें भी आपको एक नया लफ्ज दिखेगा जो पहले हम कम बोलते हैं, और वो क्या है? अम बताहा। और फिर इसी में लफ्ज देखिए नबातन भी आ रहा है, तो इन दोनों का एक ही रूट है। नबता कहते हैं हर वो चीज जो जमीन से उगे, अल मनबित कहते हैं उगने की जगह को। बच्ची जब जवान होती है ना तो उसके जिस्म पे कुछ निशानियां ऐसी निकल आती हैं, उसके लिए भी लफ्ज आता है नबता सदजिल जारिया। और जब लड़का बालिग होता है उसके लिए भी लफ्ज यही इस्तेमाल होता है नबतत आनतुल गुलाम, मतलब इसमें एक तरबियत। और इसी तरह तमबीत कहते हैं तरबियत करने को। तो आप देखिए कि यहां बता हा के लफ्ज में अल्लाह तआला ने हजरत मरियम के लिए सारे लफ्ज बोल दिए, यानी वो बालिग हो गई, वो जवान हो गई, उनकी तरबियत हो गई और उम्दा तरीके से उनकी परवरिश पाई, यानी जिस्मानी परवरिश और अखलाकी तरबियत दोनों ही उनके लिए यहाँ लफ्ज आ गए। फिर इसके बाद एक लफ्ज आगे आप देखेंगे कफलाहा, कफला काफ लाम से। अल कफल कहते हैं कुल्हे को या नीचे की हड्डी को, हिप्स होते हैं ना, तो हिप के नीचे जो बोन होती है ना उसको कफल कहते हैं। आप देखते हैं कि वो बंदे को संभाल के रखती है ना, अगर अल्लाह ना करे किसी के कमर में दर्द हो या कमर की हड्डी या कूल्हे की हड्डी टेढ़ी हो जाए तो इंसान गिर जाता है। इसी से फिर लफ्ज कफील भी है, जो किसी की किफालत करे, जिम्मेदारी ले ले, जमानत दे दे, किसी की खबरगीरी कर ले, ठीक है। फिर इसी तरह से इसमें किसी चीज के दूसरी चीज के अंदर शामिल होने का मानी भी पाया जाता है। और ये लफ्ज कुरान पाक में इंशाल्लाह मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह पढ़ेंगे। किफल हिस्से को भी कहते हैं नसीब, उस वक्त बोला जाता है जब दूसरे को भी उतना ही हिस्सा दिया जाए। और किफलाइन का इस लफ्ज भी कुरान में हम पढ़ेंगे, दो हिस्से यानी दुगना के मानों में, यहां मुराद क्या है, किफल। आगे चलिए लफ्ज जकरिया, जकरिया का लफ्ज जकरिया है, ये अरबी नाम नहीं है। आप देखिए आज के सबक में आपको हीब्रो यानी सुरियानी नाम भी, हीब्रो और इब्रानी, बेसिकली सुरियानी जो होते हैं ना सीरियन लैंग्वेज है, लेकिन गैर अरबी लफ्ज भी बहुत सारे मिल गए। तो हजरत जकरिया का नाम बस हम इसलिए रख सकते हैं कि ये एक नबी का नाम था, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये अरब लफ्ज नहीं है। कोई ये भी सोच सकता है कि ये जिक्र से नहीं, जकरिया जकरिया ही इसकी जगह लिखेंगे। फिर आप देखिए लफ्ज मेहराब, ये आपको बहुत खूबसूरत लफ्ज आज के सबक में मिल रहा है। हराब बा इसका रूट है, हर्ब कहते हैं जंग को, लड़ाई को, वीरान करना, तबाह बर्बाद करना। तो मेहराब कौन सी जगह हुई, जहां बैठकर शैतान से जंग की जाती है, यानी सेल्फ कंट्रोल। अब देखिए आप पर मैं कितना फोकस होना चाहते हैं ना इबादत में, लेकिन बार बार डिस्ट्रेक्शन होती है, शैतान हमारे बीच में आ जाता है। मस्जिद में जाएं जुम्मा पढ़ने तो बीच में ख्याल आता है, कभी फोन होते हैं। तो मेहराब उस खास चबूतरे को कहते हैं जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत किया करती थी, और इसमें सख्ती का माना भी है, और इसमें खास तौर पे अपनी फीलिंग आती है इस चीज की कि इंसान को अपने ऊपर जबर करना पड़ता है। फिर इसी से हर्ब है, पीछे पढ़ चुके हैं, फाजनु बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूल ही, और इसी तरह से इसके मुख्तलिफ हम पढ़ेंगे आगे सूरत सबा में। महारीब का लफ्ज भी आता है। अगली आयत पे चलिए, आयत 38, हुनालिका। ये हुनालिका लफ्ज क्या है, अब आप देखिए ना कि हम आप जब कोई भी लफ्ज पढ़ते हैं तो हम तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन कुरान में तो वो अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं दिया ना। तो असल में हुना और ली का, ये तीन लफ्ज हैं, हुना हा हुना यहां के मानों में आता है। यहां जैसे इंग्लिश में आप दो लफ्ज बोलते हैं हेयर एंड देयर, तो हेयर के मानों में हुना आता है, यहां यही। जैसे आप पढ़ेंगे आगे सूरत गालिबन आराफ की आयत है, इन्ना हा हुना कायदून, बनी इसराइलियों ने कहा था कि मूसा आप जाके लड़ ले, हम तो इधर ही बैठे हैं। इसी तरह हुनालिका फौरन सूरत अल अहज़ाब में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मुराद ये कि लेट नहीं किया, देर नहीं किया, बल्कि वेन एवर, जहां भी वो मौजूद थे उन्होंने पुकार लिया अपने रब को, और फिर औलाद के लिए जो दुआ मांगी वो भी ठीक है। इसमें एक लफ्ज मिल्लदुन का थोड़ा सा देख लीजिए, ये लदुन्ना का लफ्ज क्या है, पीछे कहीं पढ़ा आपने, रबना हब लना मिन लदुन का। तो ये जो लदुन का है ना, लाम दाल नून से है, लदुन कहते हैं पास को, करीब नजदीक, अल्लाह ताला आप अपने पास से ले आए। बस लोगों ने इससे आज एक इल्मे लदुन्नी की इस्तिलाह बना ली है कि वो बंदा जो खुद डायरेक्ट अल्लाह ताला से इल्म हासिल करता है, जिसको कशफ कहते हैं या इल्हाम कहते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, क्योंकि खत्मे नबूवत के बाद अब कोई इल्हाम या कशफ का तसव्वुर लेना ये गैर कुरानी। अब लोग ये तो नहीं कह सकते कि नबियों की तरह वही आती है तो लोग उसको कशफ की बात कहते हैं। तो अगर कभी कल कोई आपसे कहे कि मेरे पास लदुन्नी इल्म है ये है वो, तो आप थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो बेहतर है, बहस ना करें। लेकिन आपको बताना चाहिए कि इल्म दो ही है, एक कुरान का और एक सुन्नत का, उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो बस उसको छोड़ दें तो बेहतर है। हम गलत चीज ले लें बेहतर है कि इंसान थोड़ा ले ले, लेकिन वो ले जिसका उसको यकीन है। फिर उसके बाद अगली आयत में आप देखिए यहया लफ्ज बहुत क्लियर है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है यहया। अब यहया के लफ्ज में हयुन छुपा हुआ है, जिंदगी वाला, जीने वाला, यहया जो जिएगा। और आप देखिए कि इस नाम को भी बनी इसराइल के नबियों के नामों में से हम अपने ऊपर रख सकते हैं। अल्लाह ताला ने बच्चे के पैदा होते ही उसकी उम्र की तरफ भी इशारा कर दिया, और अल्लाह ताला ने इस बच्चे के जरिए से फिर आगे खैर भी बहुत सारी उनको दी है। सैयद का लफ्ज सरदार के मानों में सीन वाओ दाल है, सैयद कहते हैं ना हम, सैयद हैं एक जात भी है ना, जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक होता है जिनका, वही। अज सईद रईस को कहते हैं, असाइद सरदार या सैयद से नीचे का सरदार है। फिर इसी तरह से जिसके साथ बहुत बड़ी जमात हो उसको सैयद कहते हैं। शौहर के लिए भी लफ्ज़ सैयद आता है। कहाँ पढ़ेंगे आप, किसी को पता है? अभी सूरह यूसुफ में पढ़ेंगे, उस औरत के शौहर की तरफ इशारा आता है। फिर इसी तरह इसमें इज्जत वाला शख्स और बड़े मानी और बहुत है। इसी से लफ्ज़ सूद भी है असल में, स्याही, लेकिन वो थोड़ी सी साउंड चेंज हो जाती है। जो लफ्ज़ आपको देना चाह रही हूँ वो हसूर है। बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। हा स्वाद रा इसका रूट है। हसर कहते हैं रोक देने को, कैद करना, तंगी पैदा करना। हसरुन और एहसार कहते हैं जब रुकावट की कोई जाहरी वजह भी नजर आ रही हो। अब यहाँ ये लफ्ज़ हसूर का किस तरह आया? रुकने वाला, वो शख्स जो औरतों के पास जाने से रुका रहे, नफ्स कंट्रोल रखता हो, अपनी नफसानी ख्वाहिशों को लगाम दे सके। फिर इसी से लफ्ज़ मुहासरा भी है, जो आप सुनते हैं कि दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेना। तो हसूर लफ्ज़ में असल में हजरत यहया अलैहिस्सलाम की खूबी बयान की गई है, ना कि उनकी कमजोरी बयान की गई है। बलगनी का लफ्ज़ आ रहा है आयत 40 बस, हमारी एक दो आयतें रह गई हैं उसके अंदर, देख लीजिए। कद बलगनी अल किबर, बलगा पहुंचना। अब ये बलगा क्यों कह दिया, पहुंच गया हमको बुढ़ापा? तो आप देखिए बलूगत लफ्ज़ भी इसी से, किसी खास मुकाम पे पहुंच जाना। तो यहाँ बलगतिल का लफ्ज़ बहुत ही जुमानी है, यानी जब वो सारे मरहले तय करता कराता आखिर में बुढ़ापे तक पहुंच गया। अगला लफ्ज़ बहुत दिलचस्प है, आखिर, आइन काफरा इसका रूट है। उकुर कहते हैं जड़ को, अकरन नहलतु कहते हैं खजूर के दरख्त के ऊपर के हिस्से को, उसके ऊपर वो जो खजूरों के डंडे लगे होते हैं ना, घाबे, उसके साथ ही काट देना, जिसके बाद वो खुश्क हो गया। तो यहाँ अकर से मुराद है भांज औरत, क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं होते। आकिरुन भांज, और अकरा कहते हैं ऊँटनी के पाँव काट देना, उसकी कूंछे काट देना। मुराद यहाँ वही है जो हम तफसीर में पढ़ते हैं कि वो औरत बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं थी। आयत 41 का एक लफ्ज़ ले लीजिए, रमज़ा, इशारे को कहते हैं। आपने कभी उर्दू में लफ्ज़ सुना रमज़िया कलाम? रमज़िया क्या होता है? इशारों में बात करना। शायरी में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कहते कुछ है महसूस कुछ और कराया जाता है, वही लफ्ज़ है। हरकत को कहते हैं ऐसे, मूवमेंट, जुम्बश, ऐसे हल्की हल्की सी आवाज़ होती है, हरकत। तो इसी से लफ्ज़ मज़ामीर भी है। किसको कहते हैं भला? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उसको अरबी में मज़ामीर कहते हैं, गाने को मिज़मार कहते हैं। तो इसमें आप देखिए ना, वाइब्रेशन है, थ्रिल है, होंठों से आंखों से इशारा किया जाता है। तो यहाँ इशारे से मुराद ये है कि आप जुबान से नहीं बोलेंगे। यहूद जब रोज़ा रखते थे तो बात नहीं करते थे, और चुप का रोज़ा जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, तो वही कुछ चीज़ इसमें दिख रही है। 42 आयत में देखिए मरियम के लिए जो दो लफ्ज़ है, इस्तफा की व तखहरा की, व इस्तफा की, तो इसमें इस्तफा और तखहरा में थोड़ा सा फ़र्क है। इस्तफा तो हो गया सबक के शुरू में, तखहरा को देखिए तहारत है, पाक होना। तो ए हा रा इसका रूट है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं तोहर के लफ्ज़ के अंदर। वला तकरबू हुन्ना हत्ता यतहुरना, सूरत बकरा में पढ़ी है हमने। तो यहाँ तोहर से मुराद ज़ाहरी पाक को भी कहते हैं, पाकीज़ा नफ्स जिसको उर्दू में आप बोल सकते हैं, जिसके सोच में गंदी चीज़ें ना आए। तो यहाँ से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खूबी है कि उनकी सोचें भी पाक थीं। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि हमें और हमारी नस्लों को भी इसी तरह का बना दे, और अल्लाह ताला आपके मेरे लिए आसान कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون